मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 31 अगस्त 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने चार नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 15 दिन की होने वाली क्लासेस के लिए एडमिशन लिए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं सोनू दिनकर, आप गया बिहार से हैं, अशोक कुमार, आपका गांव है खेरा खुर्द, जिला यमुनानगर हरियाणा से हैं, राहुल कौशल, आप रांची झारखंड से हैं, और अमित श्याम सुंदर राणे, आप ठाणे महाराष्ट्र से हैं। तो सोनू, अशोक, राहुल और अमित, आप सभी चारों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज शुक्रवार है और शुक्रवार को मैं कुछ सूचनाएं आप लोगों को देता हूं। हालांकि मुझे मालूम है कि जो लंबे समय से मेरे डेली ऑडियो लेक्चर को सुन रहे हैं वो थोड़ी सी इन सूचनाओं को सुनकर फेडअप भी हो जाते होंगे, लेकिन मित्रों सबका ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि नए नए श्रोता इससे जुड़ते चले जाते हैं तो उन्हें सूचना देनी एक अनिवार्यता हो जाती है। तो दोस्तों, सूचना यह है कि कल और परसों डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा। आप वाकिफ हैं शनिवार और रविवार को छुट्टी होने की वजह से, लेकिन इस बार उसमें एक दिन और ऐड होना है और सोमवार को भी डेली ऑडियो लेक्चर अवेलेबल नहीं होगा। उसका कारण आप जानते हैं कि सोमवार को भी छुट्टी है, तो इस बार तीन दिन तक डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा। लेकिन जो प्रेस क्लिपिंग्स है वो आपको जिस तरह से मिलती रही हैं उसी तरह से मिलती रहेंगी। इसके साथ ही साथ योजना और कुरुक्षेत्र के दो आर्टिकल, योजना के और दो आर्टिकल कुरुक्षेत्र के आप लोगों को शनिवार को प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि छुट्टी के दिन आप उनका बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकें। और याद रखिए दोस्तों कि ये जो आर्टिकल होते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली मेन एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो आप उनकी उपेक्षा न करें। भले ही आप तैयारी की शुरुआत ही कर रहे हो, लेकिन ये मान करके चलिए कि आपको समझ में भी नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कुछ पढ़िए, इससे दिमाग में चीजें पृष्ठभूमि के रूप में धीरे धीरे उभरती और बनती चली जाएंगी। इसके साथ ही एक वीकली क्वेश्चन आपके मेंस एग्जामिनेशन के पैटर्न पर दिया जाता है आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो मैं चाहूंगा कि आप उसकी प्रैक्टिस करें। और साथ ही हमारे जो क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उन्हें स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाता है। तो मित्रों, अब हम आते हैं आज के मुख्य विषय पर, और मुख्य विषय के रूप में मैं खासकर जो नोटबंदी, जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में विमुद्रीकरण कहते हैं, इंग्लिश में जिसे डिमोनेटाइजेशन कहते हैं, उसके बारे में कुछ बातें करूंगा। लेकिन पहले थोड़ी सी दूसरी खबरों को देख लेते हैं। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जो बिम्स्टेक है ये एक बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन नेपाल में हो रहा है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी गए हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल उस सम्मेलन को संबोधित किया। दोस्तों, मैं आप लोगों से बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब को चाहिए कि आप डीडी न्यूज जरूर देखें। अगर आपने डीडी न्यूज देखी होगी तो कल दो बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक पर बातचीत हुई है। एक तो बिम्स्टेक को लेकर के ही थी, जो हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी, उस तरह से नहीं, अलग अलग विंग के भी सेक्रेटरीज होते हैं, वो आए थे और उन्होंने बिम्स्टेक के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, बहुत अच्छी अच्छी बातें। और उससे भी अच्छी बात यह कि एक बिल्कुल जो प्राइमरी स्टेज की बात होती है, यानी कि ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको फॉरेन सर्विस में होना जरूरी है या आपको फॉरेन अफेयर का एक्सपर्ट होना जरूरी है। सच पूछे तो वहां जो बातें होती हैं उसी स्तर की होती हैं जो एक तरीके से सामान्य ज्ञान की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो न्यूज है और न्यूज पब्लिक के लिए है, तो वहां वो बड़े बैलेंस तरीके से बात की जाती है। दूसरी जो बातचीत हुई थी वो खासकर नोटबंदी को लेकर के हुई थी कि ये पूरी तरह से असफल हो गया या वो सफल हुआ, असफल हुआ तो किस मायने में हुआ, असफल हुआ तो वो किन किन मायनों में हुआ, निष्कर्ष इसका क्या निकाला जाना चाहिए, उसको लेकर के बड़ी अच्छी बातचीत थी। खैर, इसको लेकर के तो मैं अभी भी थोड़ी सी बात आपसे करूंगा, लेकिन यदि आपने वह भी सुना हो तो ये मान करके चलिए कि सोने में सुहागा हो जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग थोड़ा सा वक्त निकालें, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। एक तरीके से मैं यूं कहूं कि आप कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी की दृष्टि से या कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की दृष्टि से आकाश में ही सुराख करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली अब जो आपको पत्थर उछालना पड़ेगा वो तो पूरी तबीयत से ही उछालना पड़ेगा, चाहे आप उसे स्वीकार करें या न करें, बिना तबीयत से उछाले बात तो नहीं बनेगी। तो दोस्तों, बिम्स्टेक के बारे में जो उन्होंने बातचीत के दौरान बताई, जो सच पूछे तो मेरे दिमाग में क्लिक नहीं की थी। उन्होंने कहा कि 20 साल हो गए हैं बिम्स्टेक को, और इस 20 सालों में ये केवल चौथा शिखर सम्मेलन है, तो ये बता रहा है कि कैसे इसको तरजीह नहीं दी जा रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों से भारत अब इसको काफी तरजीह देने लगा है। तो उन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी ये बात कही, और साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तक सेक्रेटेरिएट ने ही उस तरीके से काम करना शुरू नहीं किया है। देखिए, एक ऐसा पॉइंट है जो शायद आपको आर्टिकल में भी न मिले, क्योंकि वो अब चूंकि उस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, तंत्र में थे, तो वो इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्होंने जो सबसे बड़ी जो बात कही, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने संपर्क की बात कही, कनेक्टिविटी की बात कही। उन्होंने कनेक्टिविटी को लेकर के जो बातें कही हैं, मित्रों एक बार आप उसे देखने की कोशिश कीजिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी बात में कही कि कनेक्टिविटी का मतलब ये नहीं कि सड़क और रेल बन जाए, केवल ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी की बात नहीं है, उसमें ट्रेड कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट भी होना चाहिए, डिजिटल कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए। तो देखिए, वहां कनेक्टिविटी को उन्होंने एक्सपेंड कर दिया, तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और नेबर फर्स्ट की जो पॉलिसी है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि बिम्स्टेक हो, और भारत ने ये कहा है कि भारत जो बिम्स्टेक कंट्रीज हैं उनके लिए स्टार्टअप के अगर कोई सम्मेलन होता है तो उसकी मेजबानी करने के लिए तैयार है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ उन्होंने फेलोशिप, छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप देने की भी बात कही है कि जो बिम्स्टेक देश हैं उनके छात्रों को स्कॉलरशिप भारत देने के लिए तैयार है। तो कुछ अच्छे प्रस्ताव रखे गए हैं, लेकिन इस पर हम लोग बात करेंगे तब जब इसका घोषणा पत्र जारी हो जाएगा। कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। दोस्तों, एक छोटी सी खबर यह है कि जो विधि आयोग हमारा लॉ कमीशन है, लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट ऑफ फाइनल दे दी है, और उसने रिकमेंड किया है कि जो चुनाव है, मतलब देश के जो चुनाव हैं लोकसभा के और विधानसभा के, एक साथ कराए जाने चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग का आप इस बीच में पढ़ रहे होंगे कि वो कह रहा है कि अभी कराया जाना तुरंत संभव नहीं है, उसके लिए कुछ संशोधन की जरूरत पड़ेगी, कानूनी संशोधन की जरूरत पड़ेगी। खैर, अब वो एक अलग बात है, लेकिन कंटेंट के तौर पर आपके दिमाग में ये दर्ज हो जाना चाहिए कि विधि आयोग ने भी इसी के फेवर में अपनी बात कही है कि जो चुनाव है वो एक साथ कराए जाने चाहिए। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, दोस्तों, जो नोटबंदी को लेकर है। देखिए, जो विमुद्रीकरण पर हम लोग इससे पहले भी काफी बातचीत कर चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब सरकार ने इसकी घोषणा की थी, और ये डेट मुझे लगता है कि अगर आपको ध्यान रहेगी तो एक अच्छी बात रहेगी कि ये कब लागू किया गया, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक घटना है, उसकी डेट थी 8 नवंबर 2016। याद रख लीजिए थोड़ा सा, कि कम से कम नवंबर 2016 तो याद रखिए, तो जब भी आप आंसर लिखेंगे तो आप बता सकेंगे कि इतने साल हो गए, मतलब 2016 की बिल्कुल लास्ट की बात है। तो लगभग यूं कह लीजिए कि 2 साल होने को आए हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था काले धन को खत्म करना, इसीलिए 500 और 1000 के नोट को प्रतिबंधित किया गया था। लेकिन जो अभी आरबीआई की रिपोर्ट आई है उससे ये बात सिद्ध हो गई है कि इनफैक्ट काला धन समाप्त नहीं हो सका है। उस समय तक जितनी भी मुद्रा प्रचलन में थी, जो आरबीआई ने जो डेटा दिए थे वो था 15,41,000 करोड़ रुपए के नोट प्रचलन में थे, 15,41,000 करोड़, और उसमें से 15,31,000 करोड़ रुपए वापस आ गए, मतलब 99.3% वापस आ गए। तो 0.7% या कह लीजिए 10,000 करोड़ रुपए ही वापस नहीं आए। इसका मतलब ये हुआ कि क्या काला धन था ही नहीं, क्योंकि अब काले धन को व्हाइट कराना तो बड़ा मुश्किल था, क्योंकि आप बैंक में अगर जमा करेंगे तो मुसीबत हो जाएगी, बैंक तो मतलब सरकार तो पूछेगी कि आपके पास ये पैसा कहां से आ गया। तो क्या हुआ, आपको ध्यान होगा कि जो डिमोनेटाइजेशन का जो दौर था विमुद्रीकरण का, उस दौरान बैंकों में बहुत अधिक एक तरह से भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, मतलब बैंक अधिकारियों के साथ हम मिलकर जो जिनके पास काला धन था उन्होंने एन केन प्रकारेण अपने उस काले धन को व्हाइट में कन्वर्ट कर लिया, और वो आ गया। अब सवाल यह है कि काला धन खत्म नहीं हुआ, वो व्हाइट बन गया, और व्हाइट बन गया और दुर्भाग्य यह है कि सरकार को उसका टैक्स भी नहीं मिला, तो दो तरफा नुकसान हो गया। एक तो काला धन मेन उसमें आ गया, तो चलिए उसकी तो कोई बात नहीं होती, एक अच्छी बात हुई कि कम से कम काला धन खत्म हुआ और वो मेन पाइपलाइन में आ गया, तो उससे कम से कम इकोनॉमी में एक जान आएगी या प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी या जो भी उसके असर होंगे। लेकिन सरकार को टैक्स का नुकसान हो गया और उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, तो इसको लेकर के अभी एक जबरदस्त बहस की शुरुआत हो गई कि सरकार इस मामले में फेल रही है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि इसको लागू करने से पहले अफसोस की बात यह है कि सरकार, इसके जो विशेषज्ञ हैं, इस बात को प्रेडिक्ट नहीं कर सके कि ऐसा तो हो सकता है। और ये बहुत ही जानी मानी बात थी कि लोग कोशिश करेंगे, तो किन किन रास्तों से कोशिश की जा सकती है और उन रास्तों को कैसे बंद किया जाए, इसके बारे में विचार ही नहीं किया गया। दूसरा ये था कि चूंकि नकली नोट बहुत बनने लगे हैं, तो अगर हम 500 हजार के नोट बंद कर देंगे तो नकली नोट बनने बंद हो जाएंगे, तो ये भी अब धीरे धीरे दिखाई दे रहा है कि नहीं, नकली नोट बनने बंद नहीं हुए, क्योंकि अभी जो नए नोट प्रचलन में आए हैं 500 और 2000 के, उनके भी बकायदे डुप्लीकेट नोट बनने शुरू हो गए हैं, तो यहां भी एक तरीके की असफलता ही दिखाई दे रही है। एक बात उसमें और भी थी, क्योंकि सरकार का यह मानना था कि जो लोग काला धन अपने पास रखते हैं, वो बड़े नोट अपने पास रखते हैं, आप 50-50, 100-100 की कितनी गड्डियां रखेंगे, तो 1000 के ही नोट आप 500 के नोट रखेंगे, इसीलिए सरकार ने 500 और 1000 के नोट ही विमुद्रीकरण के अंतर्गत लिए थे। लेकिन अब आलोचना करने वालों का एक भी तर्क है जो बड़ा वैलिड है कि भाई उसकी जगह आपने 2000 के नोट निकाल दिए, तो अब जिनको काला धन रखना है वो 2000 के नोट को अपने पास रखेंगे, तो वहां भी आपने उनको वो सुविधा दे दी। एक बात और भी कही जाती है, और वो ये कही जाती है कि सरकार को ये लग रहा था कि जब काला धन खत्म हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, लोग ये करेंगे कि जो उनके पास जो पैसा है अब वो तो व्हाइट है, क्योंकि काले धन का तो आप उपयोग नहीं कर सकते ना, केवल खर्च वर्च के लिए उपयोग कीजिए और वो भी उसमें जहां अनअकाउंटेड मनी है। लेकिन अगर आपके पास व्हाइट मनी है, वैध मनी है, तो बट नेचुरल है कि आप उसका उपयोग करेंगे। तो उपयोग क्या है, आप चाहे बैंक में रखिए, चाहे आप उसे संपत्ति खरीदिए, क्योंकि उससे तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, नहीं तो घर में ही रखे रखे तो वो पैसा, उसकी जो वैल्यू है वो कम होगी। तो ये भी देखने में आ रहा है, अभी जो रिपोर्ट आई है कि लोगों के पास जो बचत है वो अधिक हो गई है, मतलब लोगों के पास जो बचत है वो अपने पास कैश के फॉर्मेट में रख रहे हैं, उससे वो संपत्तियां नहीं खरीद रहे हैं और न ही वो बैंकों में वो पैसा जमा कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यहां भी एक प्रकार से असफलता मिली, आतंकवादी गतिविधियों में रोक कमी आएगी, पहले माना जा रहा था, शुरू में कुछ ऐसा लगा भी, लेकिन वहां भी कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये था कि जो आतंकवादी संगठन है उनके पास जो पैसा रखा हुआ है वो सब बेकार हो जाएगा। कुछ समय के लिए तो उस समय लग रहा था कि नहीं, अब थोड़ी सी कमी आ रही है, लेकिन फिर से देख रहे हैं कि कश्मीर वगैरह की घटनाएं आप सुन ही रहे हैं। तो इन तथ्यों के आधार पर ये माना जा रहा है कि ये एक प्रकार से बड़ा सरकार का जो निर्णय था ये असफल रहा है, और नो डाउट कि इसके बाद हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कमजोर पड़ी है, जो असंगठित क्षेत्र के उद्योग हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लोगों की बचत कम हो, लोगों की आय कम हो गई है, किसानों को अपनी जो अनाज है उनकी सही कीमत नहीं मिल पाई है, हमारे औद्योगिक विकास पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो मित्रों, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बड़े वैलिड पॉइंट हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार का कहना है कि यही केवल नहीं है, उसके लिए बकायदे उन्होंने 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं। पहला पॉइंट तो यही है कि 18 लाख लोगों से जिन्होंने पैसा जमा करा दिया, या भी उनकी पूछताछ की जाएगी कि आपके पास पैसा कहां से आया, तो आप ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से फेल हो गया है। वो ये भी कह रहे हैं कि पहले जो रिटर्न भरने वाले लोग थे उनकी संख्या केवल 3,80,00,000 थी, जो अब बढ़कर 6,86,00,000 हो गई है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा अब इनकम टैक्स के दायरे में आ गए हैं। ठीक इसी तरह से कह रहे हैं कि जो टैक्स का कलेक्शन है विमुद्रीकरण के बाद बढ़ा है, पहले जो 6,38,00,000 था, अब वो बढ़कर के लगभग 10,00,00,000 के आसपास हो गया है, और अर्थव्यवस्था जो है हमारी इनफॉर्मल से अब फॉर्मल की तरफ जा रही है, डिजिटल पेमेंट की संख्या बढ़ी है। तो इस तरह से सरकार के पास भी अपने कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत वैलिड पॉइंट हैं। हो सकता है कि सीधे सीधे उसका लाभ उस तरीके से दिखाई न दे रहा हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसके कुछ फायदे भी हुए हैं। तो मित्रों, चूंकि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है, अर्थशास्त्र से भी जुड़ा हुआ है, तो मैंने इस टॉपिक पर आपसे थोड़ी सी बातें की हैं। आप भी इन बातों पर विचार कीजिए और मैं आपको इसको लेकर के एक दो जो इस बीच में दो तीन एडिटोरियल कमेंट लिखे गए हैं वो भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ताकि आप उनमें से भी वाक्य निकाल करके अर्थव्यवस्था को समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जिनकी संख्या आज अपेक्षाकृत ज्यादा है। कोई बात नहीं, अब 3 दिन की छुट्टियां हैं, आप 3 दिन तक आराम से इनका इस्तेमाल कीजिएगा। सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं और उन्हीं में से 4 मित्रों के नाम हैं: कुलदीप पाल, नीलिमा, अंकित सिंह, मिराज अहमद कुशीनगर उत्तर प्रदेश से और निदा खान। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करने से पहले आप सबके प्रति बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि छुट्टी के ये 3 दिन आपके बड़े खुशनुमा तरीके से व्यतीत हों, आप इनका भरपूर उपयोग करें, खूब एंजॉय करें। मंगलवार को फिर मुलाकात होगी और फिर ढेर सारी बातें होंगी। तब तक के लिए मेरा अभिवादन स्वीकार करें और मुझे इजाजत भी दें। नमस्कार।